नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जिसका विषय है पोषण सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका। सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण से लड़ने के लिए मिलकर काम करने वाली प्रगतिशील और टिकाऊ रणनीतियों पर चर्चा करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद ये मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है।
अगर हजार साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है तो हम हजार साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। जय सोमनाथ।
गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। तिरुचि में एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके की विफलताओं को राज्य की जनता के सामने लाने और भ्रष्ट मंत्रियों को बेनकाब करने को कहा। उन्होंने राज्य की वर्तमान सत्ता को चुनौती देने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए AIADMK नेताओं के साथ भी चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPFS के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अतुल एस चंद्रकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव न होने की वजह से श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग EPFO के दायरे से बाहर रह गया है। EPFS एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वो हाल के घटनाक्रम को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के कार्यकारी निदेशक फातिहा बेरोल से मुलाकात की। इस मुलाकात में वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य और भारत की विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर 4 से 10 जनवरी तक फ्रांस और लग्जमबर्ग की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ काम करने का वायदा किया है। रॉड्रिग्स को उनके भाई और नेशनल असेंबली के नेता जॉर्ज रॉड्रिग्स ने शपथ दिलाई। रॉड्रिग्स 2018 से वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति हैं और देश की तेल पर निर्भर अर्थव्यवस्था और इसके खुफिया विभाग की भी देखरेख करती रही हैं। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो ने न्यूयॉर्क शहर की एक संघीय अदालत में पेशी के दौरान कई संघीय आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। न्यूयॉर्क में अमरीकी संघीय अदालत के समक्ष अपनी पहली पेशी में मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। बेनोनी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 8 विकेट से हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 246 रन का लक्ष्य दिया था। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।